ओम शांति। आप सभी भाई और बहनें जो सदा कमल आसन पर बैठे, प्रवृत्ति में रहकर और बाबा की श्रीमत पर चलना अर्थात कमल पुष्प समान जीवन या कमल आसन पर विराजमान होगा। आप सभी ने जो सतयुग आद से परिवार में रहने का कस्टम कहो, इंस्टीट्यूशन कहो, उसको अंत तक, कलयुग के अंत तक या तो कलप के अंत तक पूरा निभाया है, तो इसलिए पहले तो आपको मुबारक हो। दूसरी बात कि आपके इस हिम्मत और बहादुरी के लिए बाबा ने खास निमित्त बनी हुई दादियों को एक तो ये प्रेरणा दी कि आप सबका ये कार्यक्रम रहे विशेष। हाँ, नशा है इसका कि खास बुलाया है आपको, और सिर्फ बुलाया ही नहीं है, स्वयं भी उसमें उपस्थित है। दादी जी भी, जानकी दादी भी पहुंच गई, गुलजार दादी भी पहुंच गई। तो ये है आपका जितना ईश्वरी जीवन से प्यार है, पवित्र जीवन से प्यार है, उतना ही जो अपने बड़े हैं, पूजनीय बनने के हकदार हैं, उनको भी उतना ही आपसे प्यार कि हम इस भट्टी में जरूर हाजिर रहे, प्रैक्टिकल में देख रहे हैं बाबा का दिया हुआ प्रोग्राम, निमित बनी हुई महान आत्माओं का निमंत्रण। उसमें इतनी शक्ति कि आप रुक नहीं पाए, और यहां आने के बाद क्या महसूस कर रहे हैं। यंग लोगों के क्लास होते हैं, उसमें समय पर नहीं पहुंचते, लेकिन मैंने जो तारीफ सुनी आप सबके उमंग की कि इतने पंक्चुअल हैं सब, जो समय क्लास का रखते हैं सब क्लास के समय से पहले पहुंच जाते हैं। इसको कहते हैं कि जो अपने जीवन के सारे जीवन के जो डिसिप्लिन थी, इससे सिद्ध होता है कि आपने अपनी जो लौकिक जीवन भी बिताई है और उसके बाद अलौकिक जीवन में आए हैं, तो कितने डिसिप्लिन्ड रहे हैं आप, कितना सुंदर ढंग से इस लाइफ को आपने बिताया, पंक्चुअलिटी का ध्यान रखा जो मनुष्य जीवन में बहुत बड़ा एक गुण है, और एक दो को देखने से कितना उमंग आ जाता है। जब एक पंक्चुअल है तो साथ वाले भी उसी उमंग में आ जाते हैं, और लाभ किसका है। पंक्चुअल हुए, समय पर आए, तो आद से पूरा लाभ लेने का हक प्राप्त होता है हर एक को व्यक्तिगत। पर व्यक्तिगत के साथ साथ जैसे गुरुवाणी में आता है, एक का भला होता है तो कहते तेरे भाणे सर्व का भला, वो प्रैक्टिकल देखने में आ रहा है। और आपकी इस भट्टी की रिजल्ट से इसका जो समाचार है, इससे कितनी सेवा होगी ये आप नहीं सोच सकते। सारे ब्राह्मण परिवार के अंदर उमंग उत्साह भर जाएगा, बहुत इसकी विशेषता है। اور جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ سبھی بھائی یا بہنیں جو بھی آئی ہیں 10 ورش سے ادھک سمے سے ایشوری گیان اور یوگ کا ابھیاس کر رہے ہیں. 10 ورش کوئی چھوٹی چیز نہیں. بابا تو ساکار بابا کے دنوں کی بات یاد آتی ہے. بابا کہتے تھے ایک سپتاہ کا کورس کیا باپ کو پہچانا تو وہ رک نہیں سکتے, بھاگ کے آ جاتے ہیں بابا سے اپنا حق لینے کے. مرلی میں کبھی کبھی سنتے بھی ہوں گے, پڑھتے بھی ہوں گے کہ بابا کے کوئی بچے ہیں جو 1 سال کے ہیں, کوئی 10 سال کے ہیں, کوئی 6 ماس کے ہیں, کوئی 3 ماس کے ہیں, کوئی 1 ماس کے ہیں, کوئی 1 سپتاہ کے ہیں, کوئی 1 دن کے بھی ہیں. ایسا بھی ہوا ہے کہ 1 دن پریچے ملا اور بابا کے سنمکھ پہنچے, بابا کی آکرشن. لیکن آکرشن کس کو ہوتی ہے؟ بابا مثال دیتے رہے کہ میگنیٹ کی طرف وہ سوئی جلدی کھینچتی ہے جس کے اوپر جنگ نہیں چڑی ہوئی, کٹ نہیں چڑی ہوئی. ارتھات ایسی آتما جس کے اوپر میل نہیں ہے, نرمل ہے, ان کو جیسے ہی پریچے ملتا ہے وہ آکرشت ہو جاتے ہیں. کیونکہ آتما کے اپنے نجی سوروپ کے انوکول واتاورن ملتا ہے, ویکتی ملتے ہیں, اور اس میں بھی سویم باپ ملتا ہے تو کھینچ ہوتی ہے. آپ سے ایک پرشن پوچھتے ہیں, مدھوبن آنے کے بعد مدھوبن میں گیان میں تو چل رہے ہیں, پریکٹس کر رہے ہیں, لیکن مدھوبن میں اور لوکک گھر میں انتر کیا ہے؟ لگتا ہے کوئی انتر ہے, کچھ ہے کس چیز کا؟ جی آج کے وشے کے انوسار یہی کہیں گے کہ جو وایو منڈل آپ کو مدھوبن میں ملتا ہے, جو واتاورن مدھوبن کا ہے, لیکن واتاورن صرف باہر کا نہیں, جو آتما کو اندر فیل ہوتا ہے, پرسیو کرتے, انگلش شبد ہے پرسیپشن, جو یہاں کا وائبریشن ہے اس میں اور دوسرے ستھانوں میں آپ کو انتر لگے گا. کیونکہ ہمیں انبھو ہے بامبے سے جب بابا سے ملنے آتے تھے مدھوبن میں, ایک تو بابا سے ملنے کی آکرشن, لیکن مدھوبن کے گیٹ سے اندر انٹر کرتے ہی اس وائبریشن میں آنے سے ایسا لگتا تھا کسی اور دنیا میں پہنچ گئے. یوں تو کئی بھائی بہنوں کا انبھو ہے کہ یہاں سے آبو روڈ سے جیسے جیسے بس میں اوپر جاتے تھے, آج کل تو کار ٹیکسی بہت کچھ ہو گیا, ان دنوں میں تو بس سے جاتے تھے, بس سٹینڈ تک بس میں جاتے تھے, بس سٹینڈ سے بیل گاڑی میں سامان رکھ کر کے مدھوبن تک پہنچتے تھے, پیدل جاتے تھے. لیکن وہاں پہنچتے ہی ایسا لگتا تھا کسی اور دنیا میں پہنچ گئے. کئی تو کہتے ہیں مدھوبن جو ہے وہ 3 لوک سے بھی نیاری دنیا ہے, اور اگر سامنے ہی سامنے بابا مل جاتے. ایک بار کا مجھے انبھو ہے جام نگر سے, ابھی دوسری بار میں آیا تھا مدھوبن جام نگر سے, جیسے ہی سامنے آیا پہلے میں نے بابا کو نہیں دیکھا, بابا اچانک اپنے آفس سے باہر آئے تھے, دور سے دیکھا تو بابا نے آواز دی ہیلو ملٹری مین, نیوی میں تھا اس سمے, اتنا گدگد ہو گیا. ایک طرف گدگد ہو گیا, دوسری طرف بابا نے ایسا جو سیلیوٹ کیا تو میں ایک دم پانی پانی ہو گیا کہ ابھی میں اس کا ریٹرن کیسے کروں گا. تو جس ستھان پر बाबा इतने समय से रह रहे थे, केवल रहने के लिए नहीं था, उस तपोभूमि में बाबा ने जो तपस्या की, उस तपस्या के कारण बाबा के साथ और भाई बहनों ने जो तपस्या की, तो जहां जिस तरह का कार्य चलता है उसके अनुसार वायुमंडल बनता है, उसके अनुसार वाइब्रेशन बनते हैं, वो महसूस होते हैं। तो मधुबन के वाइब्रेशन उस महान तपस्वी कहो, राजयोगी कहो, बाबा कहो, उनकी तपस्या से और उसके साथ साथ ईश्वरी सेवा के कार्य के फलस्वरूप, और तीसरा ईश्वरी परिवार के संबंध से मिलन और लेन देन की जो बात है, उसके फलस्वरूप जो वायुमंडल मधुबन का बना, एक तरफ बाबा की आकर्षण और दूसरी तरफ उस वाइब्रेशन के कारण आत्मा को जो आत्मिक सुख मिलता है, वो बार बार खींचता है कि चलो मधुबन। हम कोई बहाना ढूंढते थे कि साल में 3-4 बार कहीं चांस मिल जाए, चाहे 3-4 ही छुट्टियां मिल जाए, मधुबन जाना। इतने तक हुआ, बाबा से मिलने के बाद जब मैं वापस गया, ऐसी आकर्षण हुई, मैंने जाकर के अपना परमानेंट होम एड्रेस चेंज करा दिया नेवी में, कि मेरा होम एड्रेस माउंट आबू है, पांडव भवन है, और मेरे गार्डियन प्रजापिता ब्रह्मा है। किस बात के लिए? बाबा से मेरे को स्थूल में सौगात क्या मिली? बालों को ठीक करने का एक ब्रश, और आंख में डालने के लिए सुरमा डालने के लिए सुरमादानी, और सुरमचू। एक इस तरह से बाबा ने पहली बार जब आया तो वो गिफ्ट दी, जो मैंने एक बार भी यूज नहीं की, रखी है अभी तक मेरे पास। लेकिन जो सच्ची सच्ची गिफ्ट, जो स्थूल नहीं है, वो थी बाबा के पास जो बैठने से मुझे अनुभव हुआ, पहली बार बैठने से। कोई बातचीत नहीं की थी हमने, बाबा के रूम में जो अभी भी जहां ट्रांसलेट रखा है, बाबा की गद्दी वैसे ही है, बाबा का पलंग वैसे ही है, बाबा के गद्दी पर बाबा और मम्मा बैठे थे, उनके सामने बैठे, उस समय का जो अनुभव हुआ, उसने जीवन का क्या कहें, वो मार्ग ही बदल दिया। बाबा की अपनी जो पर्सनैलिटी, देखने में अभी भी आप देखेंगे बहुत सिंपल देखने में बाहर से, लेकिन उसके अंदर जो वो मैग्नेटिक पावर थी, खींचती थी। बाबा ने नहीं कहा कि आओ मेरे से गले मिलो, नहीं, लेकिन एक महसूसता हुई, वो बेहद का बाप मेरे सामने बैठा है, अब नहीं मैं गले मिलूं तो कब मिलूंगा। लेकिन बाबा के नैनों से, बाबा के मस्तक से, वो जो उस समय का वाइब्रेशन, उसने आत्मा को बिल्कुल ही बदल दिया। लेकिन बाबा के इतनी शक्तिशाली स्थिति बनाने का आधार क्या था? वो थी बाबा की तपस्या, और जिसको बाबा ने, अव्यक्त बाप दादा ने भी मुरली में कहा, साकार मुरली में भी आता है, साकार में थोड़ा सिंपल ढंग से कहा, बच्चे जितना एकांत में रहेंगे और जितना एक की याद का अभ्यास करेंगे, उतना आत्मा पावन बनेगी, जितनी पावन बनेगी उतना खुशी का पारा चढ़ेगा, जितना आनंद में रहेंगे तो चेहरे से सब समझेंगे इसको कोई विशेष प्राप्ति। लेकिन बाबा ने पहले खुद एक के अंत में जाने का अभ्यास जो किया, उसको हम लोगों ने देखा। بابا کبھی جب اکیلے بیٹھتے جھونپڑی میں جا کے بیٹھ جاتے یا روم میں بھی اپنے, تو اس سمے جا کے پاس بیٹھنے میں ہی ایک دم الوکتا آ جاتا, چاہے بابا درشتی دے یا نہ دے, اتنا وائبریشن پاورفل. اور بلکہ اتنے تک ہوتا تھا کہ بابا جب تھوڑے ٹائم کے بعد درشتی دے کے تھوڑا پیار سے پوچھتے, آؤ بچے, کچھ پوچھنے کے لیے آئے, کیونکہ وہ ٹائم ہوتا تھا بابا سے پرسنل ملنے کے لیے, تو وہ بھول جاتا تھا کہ کیا پوچھنے آئے تھے, کیونکہ بابا کے وائبریشن سے, بابا کی درشتی سے وہ اتنا سکھد انوبھو ہوتا تھا, آنند میں, اتیندریہ سکھ پریکٹیکل, کہ اور کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. تو آج وہی وشے بابا نے, کیونکہ بابا کی بھی یہ بہت بڑی پرورتی, وہ چھوٹی پرورتی سے یہ بے حد کی پرورتی, بابا کے کتنے بچے, ایک ایک بچے کا بابا کو دھیان رکھنا پڑتا. آپ پرورتی میں رہنے والے زیادہ سے زیادہ روز کے کتنے پتر لکھتے ہوں گے آپ بچوں کو, مشکل سے ایک لکھیں گے, دو لکھیں گے بس. اور بابا روز بیٹھ کر کے 15-20 پتر لکھتے, کبھی کبھی تو 25-30 بھی لکھتے. یعنی پریکٹیکل پرورتی, یہ سویکار کیا بابا نے کہ یہ میرے الوکک بچے ہیں, ان کو مجھے پرسنلی ان کی پرورش کرنی. جو مرلی صبح کو چلے اس میں جو اچھے سے اچھی پوائنٹس ہوں, جو سرویسیبل بچے ہیں ان کو ضرور بابا کو اسی دن پتر لکھ کے بھیجنا ہے, دادی جی کو, بڑی دیدی کو, جانکی دادی کو, جگدیش بھائی کو. کیوں؟ جس چیز کو بابا نے خود انبھو کیا, جتنی ویلیو بابا کو خود تھی, بابا چاہتے تھے اتنی ہی ویلیو ہر ایک بچے کو. کیول اتنے تک نہیں کہ بھائی وہ ٹیپ بھیج دی یا پتر بھیج دیا جس کو پڑھ کے دادی جی بھاشن کر دیں, اس خیال سے نہیں, لیکن اس کی ڈیپتھ میں اتنا جا سکے, اس کی گہرائی کو سمجھیں, جانیں اور اس کو اپریشیٹ کریں. جب خود ہم اپریشیٹ کریں تو ہماری اپنی استھتی اس طرح کی بنے جو باپ سمان بنے. اس کے لیے یہ ایٹیچیوڈ چاہیے. ٹاپک جو آپ کی ہے ورتی, وائبریشن اور وایو منڈل. تو بابا کی ورتی کیا تھی, اس کو میں تو آئیڈیل وہی سمجھ کے اپنے سامنے رکھ کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تھیوریٹیکل بولنا میرے کو زیادہ نہیں آتا ہے, پر جو پریکٹیکل دیکھا ہوا ہے, جو پریکٹیکل انبھو کیا ہوا ہے, وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے میں جو آنند آئے گا وہ تھیوری میں نہیں. تو بابا کی اپنی ورتی کیا تھی کہ ایک ایک بچہ باپ سمان بنے. باپ سمان ارتھات وشو کلیان کر, اور وشو کلیان کرنے کے لیے جو ورتی چاہیے وہ بے حد کی چاہیے. اس کے لیے جتنی بدھی پاون ہوں گی, جتنا من نرمل ہوگا, اور جتنا دل میں سب کے پرتی بے حد کا پیار ہوگا, اپنا پن ہوگا, اتنی ہر ایک کے دل میں شبھ بھاونا رہے, اتنا ہر ایک کے کلیان کے پرتی उत्सुकता रहेगी। ऐसी शुभ और शुद्ध वृत्ति जैसे बाबा ने स्वयं में अनुभव किया, वो बच्चों में धारण कराने के लिए सदा उत्सुक रहे, आज दिन तक रहते। अव्यक्त वाणी हम लोग सुनते हैं, उसको आप अच्छी तरह से अध्ययन करो, देखो उसको, तो साकार या अव्यक्त दोनों को सामने रखें अगर, तो क्या वृत्ति थी बाबा की। एक तो हर एक बच्चा इस पुरानी दुनिया के जो बंधन है, दुख है, अशांति है, रोग है, सबसे ज्यादा तो मनसा की बात में जाते, इन सब से मुक्त हो जाए, प्रैक्टिकल में कमल फूल समान बन जाए। दूसरा, इतने शक्तिशाली बाप समान बने जैसे बाबा, प्रैक्टिकल शक्ति का स्तंभ बना, ज्ञान का स्तंभ बना, शांति का स्तंभ बना, पवित्रता का स्तंभ बना, ऐसे मेरा हर एक बच्चा ऐसा मेरे समान पवित्रता का स्तंभ, शक्ति का स्तंभ ऐसे बन जाए। ये थी वृत्ति बाबा। और जैसी वृत्ति वाइब्रेशन से पहले कृति होती है, जैसी वृत्ति है वैसी दृष्टि कहते हैं। इतनी ऊंची वृत्ति होने से दृष्टि में भी अपनापन आ गया, लौकिकता को भूल करके अलौकिकता में सारे चले, इतनी ऊंचाई में। और फिर बाबा की दूसरी वृत्ति क्या, बहुत ऐसी बातें हैं जो मैं आपको क्या बताऊं। भक्ति भाव में हम लोग होते हैं तो मन में होता है भाई बाबा बाबा भी है, बाबा शिक्षक भी है, बाबा सतगुरु भी है, तो गुरु के चरण थोड़ा स्पर्श करें, थोड़ी सी बाबा की सेवा करें, बुजुर्ग है बाबा, थोड़ी बाबा की टांग ही दबा दें थोड़ा सा। नहीं, बाबा ने ऐसा गुरुपन नहीं दिखा। अगर हमने कहीं बात करते करते हाथ लगा दिया तो धीरे से टांग पीछे खींच लेते, नहीं बच्चे बाबा ये सेवा नहीं ले सकते, बाबा तो आप बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट फादर है, ये है वृत्ति। तो फॉलो फादर क्या करें। हमारी वृत्ति भी अगर ये बन जाए कि हम जैसे बाबा विश्व कल्याणकारी विश्व सेवाधारी है, हमारे अंदर भी ये गुण कूट कूट करके दिल में बन जाए। ऐसी वृत्ति से जो हम कारोबार में आएंगे, कृति में आएंगे, तो उसके अंदर बेहद की वृत्ति होते लेकिन बहुत ही निर्माणता सितारे, क्योंकि सेवादारी और बड़ी शुभ भावना से, जैसे बाबा ने हम बच्चों की पास्ट को ना देख करके, बल्कि वर्तमान को भी नहीं देखते। अब 10 साल या उससे ऊपर सारे ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा बैठे हैं, लेकिन सब जानते हैं कि हम अपने अपने लक्ष्य को पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, अभी तक 100% वहां पहुंचे नहीं, इसलिए तो बटी रखी है अभी। लेकिन बाबा इसको भी नहीं देखते, बाबा वर्तमान को भी ना देख करके क्या टाइटल देते हैं, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। इसी नजर से हमें देख रहे हैं। क्या हमारे अंदर ऐसी दृष्टि आई है कि हम हर एक को ऐसा देखें? अगर ऐसी भावना से हमारा कारोबार होगा, लेन देन होगी, इंटरेक्शन होगा, तो हमारे वाइब्रेशन भी ऐसे फील होंगे। अगर ऐसा भाव ही नहीं है, वृत्ति ही नहीं है, तो वाइब्रेशन कहां से फील होगा? ये बहुत गुहे बात है, बहुत बड़ी बात है। चाहे लौकिक अपने घर में बाल बच्चे हैं उनके प्रति है, चाहे सेंटर पे जाते हैं वहां के भाई बहने हैं उनके प्रति है, और चाहे समाज में जहां रहते हैं समाज के अन्य जो आसपास में रहने वाले लोग हैं उनके प्रति है हमारी क्या वृत्ति रहती। ये बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, उसके लिए हमें अपना एटीट्यूड सदाकाल के लिए ये बनाना है कि जैसे बाबा ने अपनी वृत्ति हम सबके प्रति बनाई, वैसे हम भी सबके प्रति कल्याण की भावना, शुभ भावना, उनके अवगुणों की तरफ ना देखें, उनकी कमियों की तरफ ना देखें, लेकिन जैसे बाबा हमें उसी नजर से, हाँ कई बार कहते हैं उम्मीदों के सितारे, अपने नैनों के भी सितारे कहता है, उम्मीदों के भी सितारे। क्यों नहीं हम हर एक के अंदर उम्मीद रखें, क्यों नहीं हम हर एक के अंदर वो उमंग भरें कि नहीं, विश्व कल्याण का कार्य आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। बाबा के राइट हैंड बनने का यही मौका है, बार बार नहीं आएगा। तो ऐसी वृत्ति जब रखेंगे तो कृति हमारे कर्म में भी ऐसी प्रैक्टिकल में आएगी, वो देखने में आएगा। और उसके साथ साथ विशेष रूप से जो बाबा ने हमें खास गाइडेंस दिया, जो बाबा खुद करते भी थे, साकार बाबा अमृत वेले के टाइम सारे विश्व के प्रति भक्ति में भी इस चीजों को लोगों ने अभी तक जारी रखा है। हाँ, सूर्य को जब जल देते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो सारे विश्व के लिए कल्याण की भावना रख। तो हम अमृत वेला जब खास या तो शाम के टाइम पर योग का अभ्यास करें तो इस बेहद में चले जाए, न केवल अपनी आत्मा को पावन बनाने की बात रहे, न केवल अपने सेंटर या घर या शहर को ही वाइब्रेशन देने की बात रहे, लेकिन जैसे बाबा कहता है कि आप एक एक बच्चा विश्व महाराजन बनने वाले हो, विश्व महारानी बनने वाले हो, तो ऐसा बेहद में जाकर के सारे विश्व को, सारे यूनिवर्स को हम अपना वाइब्रेशन। इन दिनों में आतंकवाद की बात बहुत है, तो वो महर्षि महेश योगी, उन्होंने अमेरिका का जो अभी 4 जुलाई को क्या कहते हैं इसको, उनका जो इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, उस पर उन्होंने कहा कि अगर मुझे 40 बिलियन डॉलर दें आप तो मैं विश्व में शांति कर दूं, आतंकवाद को खत्म कर दूं, कि 40,000 लोगों को मैं ट्रेनिंग दूंगा, 40,000 को, जिससे कि वो सारे लोगों को प्रेम की भावना सिखाएंगे तो आतंकवाद उससे हटेगा, प्रेम की शक्ति से आतंकवाद हटेगा। वो पढ़ने के बाद मुझे आया, बाबा के तो 40,000 नहीं, बाबा के तो 6 लाख बच्चे हैं, लेकिन इस स्मृति में आ जाए कि हम इसके लिए निमित्त हैं कि विश्व में शांति स्थापन करनी है, भारत को स्वर्ग बनाना है। जो बाबा कहता है अपने तन मन धन से आप बच्चों को भारत को स्वर्ग बनाना है, विश्व में शांति लानी है, ये बाबा की वृत्ति को हम धारण करें और इस अनुसार हमारी एक्टिविटी में चेंज आ जाए। वो केवल चैलेंज करते हैं और पैसे के लिए कहते हैं। बाबा ने कहा तुमको किसी से पैसे नहीं लेने, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने हैं, किसी से मांगना नहीं, मांगने से मरना भला। अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाना, ऐसी वृत्ति बाबा की। ये वृत्ति हर एक बाबा के बच्चे की सदा रहे तो भारत स्वर्ग बनने में ज्यादा समय नहीं लगे। और खासकर जो अमृत वेले का टाइम मैंने कहा, उस समय बाबा कहता ज्ञान सूर्य के साथ, मास्टर ज्ञान सूर्य होकर के बैठ, शांति के सागर पिता के साथ, मास्टर शांति के सागर होकर के बैठ, प्रेम के सागर पिता के साथ, मास्टर प्रेम के सागर होकर के बैठ, आनंद के सागर पिता के साथ, मास्टर आनंद के सागर होकर के बैठो। ऐसे सर्वशक्ति स्वरूप होके जब खास इस लक्ष्य से बैठेंगे कि ये लाइट और माइट इस विश्व को परिवर्तन करने के लिए हम दे रहे हैं, उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा है। जो कार्य बाबा कराना चाहता है वो उसमें जो सूक्ष्म वाइब्रेशन की जरूरत है, मुरली में आता पांच तत्वों को भी पावन बनाने के लिए आपका योग बल काम करता, ये अभ्यास बाबा खुद बहुत करते थे। मैं समझता हूं हम बच्चों को और अभ्यास की बहुत जरूरत है। ये नहीं मैं कह रहा हूं कि नहीं करते, करते हैं, पर ऐसे महान लक्ष्य को सामने रख के थोड़ा कम कर, अभी तक अपने को सेफ रखने के लिए करते, अपने को पावन बनाने के लिए करते, अपने विकर्मों को विनाश करने के लिए करते, लेकिन इतना पॉजिटिव साइड का जो कार्य है उसके लिए जो पॉजिटिव पावर चाहिए, शक्ति चाहिए, वो इस स्मृति से आएगी। वृत्ति को बनाने के लिए स्मृति की जरूरत, जैसी स्मृति वैसी वृत्ति बनती, जैसी वृत्ति है उससे दृष्टि और कृति बनती, और जैसी दृष्टि और कृति है, जैसी स्टेज होगी अंदर, वाइब्रेशन भी उसी से फैलता है। तो स्मृति में जब ये बाप के साथ किए मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर शांति सागर, मास्टर प्रेम सागर होके बैठेंगे तो वो बहुत बेहद की पॉजिटिव पावर को रेडिएट करेगी। जो बाबा कहता दूर बैठे भी कईयों को साक्षात्कार होगा, कईयों को स्वप्न आएंगे, कईयों को फील होगा कोई हमें संदेश देने वाला ऐसा है, वो आपको अनुभव सुनने को मिलेंगे। ऐसे आपसे कोई मिलेंगे तो कहेंगे भाई ऐसा लगता पहले आप कभी मिले, और जब उनसे आप प्यार से बात करेंगे अपनापन उनको फील होगा तो उनको याद दिला देंगे आपके, हां कल पहले वाले हम ही हैं जिन्होंने आपका कल्याण किया। तो ऐसी स्मृति से वृत्ति, वृत्ति से दृष्टि और कृति जब होगी प्रैक्टिकल, उसका वाइब्रेशन जो है, क्योंकि ये चीज हमने साकार बाबा में देखी, ये चीज हमने शुरू में जो बड़ी बहने उस समय दादी नहीं कहते थे, बहने कहते थे, उनके अंदर वो निस्वार्थ भाव, वो निर्मलता नेचुरल, और इतना प्यार हमारे सगे भाई बहने भी इतना प्यार नहीं देते। ऐसी जब वो परिवर्तन अपने अंदर आता है तो ऑटोमेटिकली सारा संसार अपना लग जाता है। बाबा की सर्विस अर्थ सब जगह, आज दादी जान की, आज यहां है कल कहीं है, सारी दुनिया में जाते आते रहते। बाबा की शक्ति उनको कहां से कहां ले जाती है, सब जगह उनको अपना अपनापन लगता है, और लोगों को उनके प्रति जो भावना है, और वही चीज हम लोगों ने भी देखी। सेवा के लिए गए बाहर, ये नहीं लगा कि हम अफ्रीका में आए तो ये काले लोग हैं, ये अपने नहीं हैं, ये नहीं लगा कि साउथ अमेरिका में गए हैं तो वो कोई अपने नहीं है, ये नहीं लगा कि हांगकांग में गए तो चाइनीज अपने नहीं है, जापान में गए तो वो कोई अपने नहीं है। नहीं, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं चारों तरफ फैली हुई है, उनको फट से लगता है कि ये तो हमारे अपने। दादी जी बार बार याद दिलाती हैं, भाई अभी इतने तक पहुंचे हैं, कम से कम एक एक दस दस की सेवा करो तो 9 लाख पूरे हो। और वो सेवा जो हम पर्चे बांटने की, एग्जीबिशन की, वो सब बहुत की है, अभी तक क्यों नहीं निकले, क्या कारण है? उसका मूल कारण क्या है कि जो आत्माओं को खींचने वाली चीज है, जो बताया ना, आत्माएं तो इस समय सभी पर जंक तो चढ़ी हुई है, ये तो पता है, फिर भी अगर मैग्नेट पावरफुल होंगे तो उनको खींचेंगे। तो हम स्वयं में इतना शक्तिशाली स्थिति का अभ्यास और अपने वाइब्रेशन इतने पावरफुल बनाएं कि वो आत्माएं खुद खींची आएं कि मुझे लगता है मुझे यहां जरूर आना चाहिए, मुझे आपसे मिलने की इच्छा हो रही है। वो है वाइब्रेशन की खींच, वो है वाइब्रेशन का अनुभव। ऐसे ही आपकी बट्टी की तरह एक मधुबन में बट्टी थी, भाई भाइयों की ही थी, और उस समय साइलेंस का प्रोग्राम था। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन मिस्टर रामचंद्रन और उसकी वाइफ वो उस समय विजिट करने आए हुए थे, और उनको जैसे उस हॉल के अंदर ले गए, मेडिटेशन हॉल मधुबन का, ऐसा वायुमंडल था, वहां पहुंचने पर उनको इतनी अच्छी अनुभूति हुई। बाद में उनका जब परिचय कराया और उनको बोला आप 2 शब्द कुछ बोलो, तो क्या बोला उन्होंने कि पुराणों में पढ़ा था कि जहां साइलेंस है वहां भगवान है, आज मुझे ऐसा ही अनुभव हुआ, सचमुच यहां भगवान। तो ये ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल अनुभूतियां बहुत होती रहती हैं, और विशेष जब हम अटेंशन रखते हैं, और समय के अनुसार अब अटेंशन चाहिए। आज हमारी बॉर्डर पर 6 महीने से मिलिट्री बैठी, समय के अनुसार। इसी तरह से बाबा की जो पांडव और शिव शक्ति सेना है, उसको भी अब समय के अनुसार अपनी वृत्ति को इतना शक्तिशाली बनाना है जिससे ऐसा वाइब्रेशन फैले। सत धर्म स्थापना के लिए इसकी जरूरत है। बाप का कर्तव्य क्या है? कई बार कोट करते हैं ना गीता के महावाक्यों को, जब जब धर्म गिलानी होती है तब मैं आता हूँ, सत धर्म की स्थापना करता हूँ, असत्य या तो अधर्म का विनाश कराता हूं। ये कौन सा समय है अभी कौन सा समय है? वही समय है ना, कल पहले वाला, 5000 साल पहले वाला। तो इस टाइम पर ये तो अंडरस्टूड है, ये तो नहीं अभी प्रश्न पूछेंगे जो बाबा पहले पूछा करते थे, किस पूछो इनसे आप किस सेना में ज्वाइन करना चाहते हो, यादव कौरव या पांडव, वो तो अभी आपसे नहीं पूछेंगे। लेकिन पांडवों का अभी कर्तव्य क्या है? बाबा कहता पांडव डबल नॉन वायलेंट, तो डबल नॉन वायलेंट माना चुप करके बैठे रहे, ठीक है शांति में बैठना है, लेकिन इससे विजय कैसे होगी? आज की मुरली के अनुसार है जब आप पवित्र बनते हो तो विश्व की राजा ही मिल जाती है। कैसे मिल जाती है? जब तक सेवा नहीं की तो राजा ही कैसे पाओगे आप? तो ये वृत्ति को पावरफुल बनाना जिससे ऐसा वायुमंडल बने, उसमें ऐसा वाइब्रेशन महसूस हो कि आत्माओं को अपना वास्तविक स्वरूप रियलाइज हो। जो मैं आपको पहला अनुभव सुनाया उसमें क्या अनुभूति की थी बाबा के सामने बैठने से? बाप दादा दोनों को सन्मुख देखते सेल्फ रियलाइजेशन का अनुभव कि मैं आत्मा वास्तव में क्या हूं, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, क्या आनंद है उसमें। ये जो इतने योगी भारत के सेल्फ रियलाइजेशन पे इतनी बड़ी बड़ी वॉल्यूम लिख के गए वो कोई ऐसे ही नहीं लिख गए। तो वो चीज आज हमें फिर से, और अगर इतने भाई और बहनें एक साथ ऐसा वायुमंडल बना देंगे तो स्पिरिचुअल एक्सप्लोजन हो जाएगा जिसकी जरूरत है। एटॉमिक वार के एक्सप्लोजन की जरूरत हमें नहीं है, वो जिनको जरूरत है वो आप ही अपना काम करेंगे, उसकी हमको चिंता नहीं है। लेकिन इसके पहले के वो कर दें, अपना काम हमें पूरा करना है। और ये देखेंगे आपके जितना इस अभ्यास में, क्योंकि बाबा को मैं बहुत नजदीक से 10 साल ऑब्जर्व किया था। शुरू की पहले 1-2 साल, फिर उसके 1-2 साल, फिर उसके बाद के 1-2 साल, और लास्ट के 1-2 साल जो थे बहुत ध्यान से देखा कि बाबा धीरे 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 आवाज से कैसे परे होते गए। उनको जो आनंद साइलेंस में आने लगा, आवाज से बहुत कम काम करते, इशारे से, 2 शब्दों से। हम बात भी कोई सुनाने जाएंगे लंबे चौड़े कई सेवा समाचार होते हैं, 2 लाइन सुन के कहेंगे हाँ बच्चे बाबा समझ गया बस। हम कहेंगे बाबा पर अभी तो मैंने शुरू किया। हाँ हाँ बच्चे बाबा समझते हैं, जानते हैं। तो ये चीज अपने को बहुत अच्छी बात है, दादियों ने इतना विशेष ध्यान रख करके इस भट्टियों का जो प्रोग्राम रखा है कि हम इस चीज को एक्सप्लोर करें कि साइलेंस के द्वारा हमारी वृत्ति कितनी पावरफुल बनती है और इसके फलस्वरूप क्या वाइब्रेशन बनते हैं। जो हम बाबा की कहानी में सुनते हैं कि कोई अपोजिशन वाले आए या कोई भी, और वो परिवर्तन होके चले गए, किस बात से परिवर्तन? बाबा ने उनको दृष्टि दे के इतना ही कहा आओ बच्चे, अपनापन उनको लगा। ऐसी बहुत सारी आपको बाबा की दादियां भी सुनाएंगी और भी सुनाएंगे, लेकिन भाव ये है कि आप सारे विश्व की आत्माओं को जो कल्प वृक्ष है उनको अपना तभी महसूस कर सकते हैं जब स्वयं को कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे हुए तपस्वी महसूस कर। ये न सोचें कि ये तो बस चार दादियां उसमें बैठी हैं या छह दादियां, बाबा बैठे हैं, मामा बैठे हैं, विश्व रत्न और विश्व किशोर दादा बैठे हैं, बस इसके अलावा कोई नहीं। नहीं, वो तो एक थोड़ा सैंपल दिखाया जाता है, लेकिन हम आप सभी उस जड़ों पर बैठे हैं कल्प वृक्ष के इस समय, जिससे सैपलिंग लग रही है सत्य, और सैपलिंग योग बल से लगती है और कोई उसका रास्ता नहीं। इसलिए अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी महसूस करें कि इस समय हमें क्या करना है। एक के अंत में जाने की बात जो है, तो बाबा खास मन को बिल्कुल साइलेंट करके शिव बाबा के पूरी शक्ति को और बाबा की पूरी जो बेहद की गुणों की बात है उसको अनुभव करने में बुद्धि लगाते, और उसके फलस्वरूप संग का रंग लगता, जो बाबा खुद वैसा ही बन गए। जो लास्ट में बाबा के शब्द थे, बाबा को ये ख्याल नहीं रहता है कि ये शिव बाबा बोल रहा है या ब्रह्मा बाबा। बच्चे आप तो यही समझो शिव बाबा बोल रहा है। वो समानता की स्थिति में आ गए। इसलिए आज तक भी बाबा का जब भी पदरामणि होती है अव्यक्त रूप से, तो क्या कहते हैं, ये नहीं कहते शिव भगवानो वाच। साकार मुरलियों में देखेंगे कहीं कहीं बाबा ने मेंशन किया, अभी कहते बाप दादा, तो दोनों साथ साथ। साथ साथ कौन रह सकते हैं जो समान है। तो हम भी अपने अभ्यास से अपने आप को इतने स्तर तक ऊंचा ले चलें, इतनी हमारी वृत्ति ऊंची चली जाए कि हम बाप दादा के साथ हैं। पहले था 2-in-1, आजकल क्या है 3-in-1, है ना? प्रैक्टिकल भी देखते हो 3-in-1, गुलजार दादी भी होती है, बाप दादा भी होते हैं। तो वो एग्जाम्पल है कि जब हम भी सच्ची दिल से बाबा के साथ ऐसी लगन लगा के बैठेंगे तो बाप दादा का साथ हमें हमेशा महसूस होगा, और ऐसी ऊंच भावनाएं हमारी पॉजिटिव भावनाएं बन जाएंगी, और उसके फलस्वरूप जब एक एक का ऐसा पुरुषार्थ और इकट्ठा होता है तो उससे वायुमंडल बनता है संगठन से, तब हम इस सारे संसार के वायुमंडल को चेंज करने का जो हमारा पार्ट है, गोवर्धन पर्वत को उठाने का एक उंगली से, उसको पूरा कर सकेंगे। ऐसा अभ्यास चाहिए और उसके लिए मनसा बहुत साफ चाहिए। जिस समय याद में बैठते हैं एक सेकंड में बाबा और पहुंचे और सागर समान अनुभव में डूब गए, बस फिर देखो उसकी रिजल्ट क्या है। तो फिर 10 साल हो या 15 साल हो या 50 साल हो या 60 साल हो या 1 साल हो, उसकी इतनी बात नहीं, लेकिन ये लक्ष्य जरूर चाहिए कि हमें बाप समान सर्वशक्ति स्वरूप बनना है, बाप समान बेहद की वृत्ति रखनी है, और बाप समान सबके कल्याण के लिए अपने शुभ भावनाओं के वाइब्रेशन फैलाने। इस भट्टी से विशेष ये अभ्यास करके अवश्य ही अनुभवी बन के हर एक जाएंगे, और जो भी संपर्क में आएंगे उनको ऐसा मीठा मीठा अनुभव करवाते बहुत जल्दी बाबा का जो कार्य है उसको सफल करेंगे। ओम शांति।